नमस्कार भारत, तारीख 3 जून, दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। इसराइल ने रॉकेट हमले के जवाब में गजा में बरसाए बम। शुक्रवार को मारी गई नर्स को आखिरी विदाई देने उमड़े हजारों फलिस्तीनी। भारत प्रशासित कश्मीर में तनाव बरकरार। सीआरपीएफ की गाड़ी से घायल युवक की मौत के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच अलर्ट पर प्रशासन। और खास मुलाकात बिहार के उस इंजीनियर से जिन्हें गूगल से मिला है सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज।
लोगों को ये काफी बड़ी फिगर लगती है ऐसे INR में देख के, बट ये वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मल ही है।
होगी उर्दू अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार सिंधुवासिनी से। इसराइली सेना की गोलीबारी में 21 साल की फलस्तीनी नर्स की मौत के बाद गजा में फलस्तीनी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। मारी गई इस नर्स का नाम रजान अल नजर था और वो सिर्फ 21 साल की थी। गजा में हजारों फलस्तीनियों की भीड़ रजान के जनाजे में इकट्ठी हुई, जो शुक्रवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान इसराइल की ओर से हुई गोलीबारी में मारी गई थी। इसराइली सेना ने एक लिखित बयान में कहा कि वो रजान की मौत की जांच करेगी। इसराइल का ये भी कहना है कि जनाजे के कुछ ही घंटों के भीतर गजा के ओर से इसराइली सीमा पर 2 रॉकेट छोड़े गए। इसके बाद इसराइल के युद्धक विमानों ने भी गजा पट्टी पर 2 जगहों पर हमले किए। एल्यूमिनियम और स्टील उत्पादों पर टैक्स लगाने के अमरीका के हालिया फैसले के बाद G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने एक बैठक की है। बैठक में काफ़ी गहमा गहमी हुई और मंत्रियों ने अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीव मनुषिन की कड़ी आलोचना की। यूरोपीय संघ और कनाडा पहले ही अमेरिका के इस कदम के जवाब में कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। वहीं मनुषिन ने वॉशिंगटन के फैसले का बचाव किया। हालांकि उन्होंने बाकी देशों का कड़ा संदेश राष्ट्रपति ट्रंप तक पहुँचाने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा,
I don't think in any way the US is abandoning its leadership in the global economy.
मुझे नहीं लगता कि अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व छोड़ रहा है। आप जो सोच रहे हैं उसके ठीक उलट, हमने अपने यहाँ टैक्स व्यवस्था में कई सुधार किए हैं और इससे हमारी अर्थव्यवस्था में अविश्वसनीय सुधार हुआ है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा न सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद है बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी फायदेमंद है। ये थे अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीव मनुषिन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। स्पेन में नई सरकार बनने के साथ ही कैटालोनिया की आज़ादी का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है। कैटालोनिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति किम टोरा ने स्पेन के नए राष्ट्रपति पेद्रो सांचेज को कैटालोनिया की स्वायत्तता के मुद्दे पर रिस्क लेने की सलाह दी है। टोरा ने कहा है कि वो स्पेन से कैटालोनिया की आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई भी जारी रखेंगे। सांचेज खुद ही इससे पहले कैटालोनिया के मुद्दे पर विचार करने का संकेत दे चुके हैं, हालांकि वो इस संबंध में जनमत संग्रह के पक्ष में नहीं हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि कोरियाई प्रायद्वीप से अमरीकी सुरक्षा बलों को हटाने की उनकी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, दक्षिण कोरिया में अमरीकी सुरक्षा बलों की संख्या का मुद्दा बिल्कुल अलग है। ये बातचीत यूनाइटेड स्टेट्स और दक्षिण कोरिया के बीच ही होगी। उत्तर कोरिया के साथ होने जा रही शिखर वार्ता में इस पर कोई बात नहीं होगी। ये थे अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के शब्द। दक्षिण कोरिया में अमरीका के 28,000 से ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 12 जून को सिंगापुर में किम जोंग उन के साथ होने वाली उनकी बातचीत में कोरियाई युद्ध की औपचारिक समाप्ति पर चर्चा होगी। जॉर्डन में सियासी संकट का दौर चल रहा है। वहां लगातार 3रे दिन लोगों ने कैबिनेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री हानी मुल्की के इस्तीफे की मांग की। ये लोग मुल्की द्वारा लगाए गए एक नए टैक्स की वजह से नाराज हैं। मुल्की ने यह टैक्स जनता के खर्चे को काबू में करने के लिए विश्व मुद्रा कोष की सलाह पर लगाया था। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। आज नमस्कार भारत की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। इसराइली सेना के विमानों ने गजा में दो ठिकानों पर बमबारी की है। इसराइल की सेना का दावा है कि गजा से उनकी सीमा में दो मिसाइलें दागी गईं। इनमें से एक को पहले ही देख लिया गया जबकि दूसरी उनके इलाके तक नहीं पहुंच सकी। वहीं गजा में रहने वालों का दावा है कि इसराइल के विमानों ने हमास के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया है। इसके पहले कल फलस्तीन की एक नर्स को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे। नर्स की मौत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई में हुई थी। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सिंधु वासनी से।
ये एक जनाजे में शामिल फलस्तीनियों की आवाज है। धमाकों, गोलीबारी और दहशत के बीच गजा में एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इजराइल और फलस्तीन आमने सामने दिख रहे हैं। इजरायली सेना का आरोप है कि फलस्तीनी चरमपंथियों ने शनिवार को सीमा पर तैनात उसकी टुकड़ियों पर गोलियों और ग्रेनेड से हमला किया। इसके बाद इजराइल के युद्धक विमानों ने भी गजा पट्टी में दो जगहों पर हमले किए। फिलहाल कहीं किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हिंसा और क्रिया प्रतिक्रिया का ये दौर शुक्रवार को इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में मारी गई फलस्तीनी नर्स की मौत के बाद शुरू हुआ। मारी गई नर्स का नाम रजान अल नजर था और वो सिर्फ 21 साल की थी। बेटी की मौत के बाद रजान की मां ने फलस्तीनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया ने देखा कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कहाँ है? मानवाधिकार कहाँ है? सैनिकों ने उसे किस आधार पर मारा? उससे किसी को क्या खतरा था? भगवान उस हर शख्स को इन सब का जिम्मेदार ठहराए जो चुप है। ये थे मारी गई नर्स की मां के शब्द। फलस्तीन की मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ने अपने एक बयान में कहा है कि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक घायलों की मदद करने वाले मेडिकल स्टाफ को मारना युद्ध अपराध है और रजान को मारकर इजराइल ने युद्ध अपराध को अंजाम दिया है। मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के दूत निकोलाई म्लादेनोव ने भी रजान की मौत पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मेडिकल वर्कर्स को निशाना नहीं बनाया जा सकता। मेरी संवेदनाएं और दुआएं रजान के परिवार और उन तमाम फलस्तीनियों के साथ हैं। इजराइल को सैन्य कार्रवाई की जांच करनी चाहिए और हमास को भी सीमा के पास ऐसी घटनाओं को होने से रोकना चाहिए। उकसावे से और जाने जाती हैं, बाकी कुछ नहीं होता। इजरायली सेना ने अपने एक लिखित बयान में कहा है कि वो रजान की मौत की जाँच करेगी। रजान की मौत से कुछ हफ्तों पहले गजा इजराइल सीमा पर भयानक हिंसा हुई थी। इजरायली सुरक्षा बलों के हाथों कम से कम 100 फलस्तीनी नागरिक मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे। इसके बावजूद हिंसा का ये दौर थमता नजर नहीं आ रहा है।
रिपोर्ट सुना रही थी सिंधु वासनी। अगली खबर भारत प्रशासित कश्मीर से। भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और लगातार तनाव बना हुआ है। बीते शुक्रवार को सीआरपीएफ की एक गाड़ी से घायल हुए लोगों में से एक की मौत के बाद कल जोरदार प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुईं। वहीं बीते दो दिनों में चरमपंथियों ने श्रीनगर और घाटी के दूसरे इलाकों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। पूरी रिपोर्ट माजिद जहांगीर से।
21 वर्ष के कैसर अहमद भट्ट को सीआरपीएफ की गाड़ी ने बीते जुम्मा को उस समय कुचल डाला जब श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के नवहट्टा में युवा प्रदर्शन कर रहे थे। जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद युवाओं की एक बड़ी तादाद नवहट्टा की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के बाहर जमा हो गई थी, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनों के दौरान वहां अचानक सीआरपीएफ की एक जिप्सी इलाके से गुजर रही थी, जिसको देखकर प्रदर्शनकारी गुस्से में आ गए और जिस दौरान गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और दो युवाओं को गाड़ी ने इस दौरान कुचल डाला, जो गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ही युवाओं को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां जुम्मा देर रात कैसर भट्ट की मौत हो गई। कैसर की मौत की खबर फैलने के साथ ही श्रीनगर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। शनिवार को कैसर के जनाजे में हजारों लोग शामिल हो गए, जो आजादी के हक में नारे लगा रहे थे। कैसर को दफनाने के बाद युवाओं और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, जिस दौरान सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि सीआरपीएफ का कहना था कि जब उनकी गाड़ी नवहट्टा पहुंची तो करीब 500 लोगों की भीड़ ने गाड़ी पर पथराव किया और गाड़ी में सवार जवानों को भीड़ लिंच करना चाहती थी। सीआरपीएफ के प्रवक्ता संजय शर्मा ने बीबीसी को बताया,
और जब वो डिप्लॉय वहां से निकल रहे थे, जब वो ख्वाजा चौक के आसपास पहुंचे तो ख्वाजा मार्केट के आसपास अचानक उनको 400-500 की भीड़ ने उनको घेर लिया
जी।
और सारे गाड़ी के ऊपर बड़ी बहुत ही सख्त स्टोन पेल्टिंग उन्होंने की और गाड़ी को रोकने पर मजबूर किया। फिर गाड़ी को घेरते हुए वो दरवाजा, गाड़ी के दरवाजे खोल के जो अंदर के इनमेट थे उनको बाहर निकालना चाहते थे।
कैसर भट्ट की मौत पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की सख्त आलोचना की है। वहीं अलगावादियों ने कैसर भट्ट की मौत को लेकर बताया है कि भारत सरकार ने अब कश्मीरी युवाओं को मारने के लिए गाड़ियों से कुचलने का नया हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया है। इस घटना के बाद प्रशासन ने शनिवार को श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद किया था, जबकि डाउनटाउन इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों को भारी संख्या में तैनात किया गया था और सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे। जुम्मा की सुबह से शनिवार रात तक कश्मीर घाटी में चरमपंथियों ने सीआरपीएफ के 7 ठिकानों, जबकि पुलिस के 1 ठिकाने और एक विधायक के घर पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। इन हमलों में सीआरपीएफ के 8 और पुलिस का 1 जवान घायल हो गया है, जबकि 3 आम नागरिकों को भी इन हमलों में चोटें आई हैं। चरमपंथियों के संबोधित हमलों को देखते हुए कश्मीर घाटी को बीते 2 दिनों से हाई अलर्ट पर रखा गया है। अलगावादियों ने शनिवार को सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने वाले आम कश्मीरियों की मौतों के खिलाफ बंद बुलाया था। गौरतलब है कि भारत सरकार ने रमजान के महीने के लिए कश्मीर में सीज फायर की घोषणा की थी। माजिद जहांगीर, बीबीसी, श्रीनगर।
आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में कल एक व्यक्ति का शव हाई टेंशन टावर से लटका हुआ मिला। उनकी पहचान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दुलाल दास के रूप में हुई। इसके पहले बीते बुधवार को पश्चिम बंगाल में ही बीजेपी के एक और कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला था। बीजेपी ने इसे लेकर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। हमारे साथी आदर्श राठौर ने स्थानीय पत्रकार प्रभाकर एम से बात की और पूरे मामले की जानकारी ली।
पुरुलिया असल में झारखंड से सटा जिला है पश्चिम बंगाल का, तो वहाँ शनिवार को सुबह गांव वालों ने देखा कि हाई टेंशन टावर पे स्थानीय युवक दुलाल कुमार का शव लटका हुआ है। तो उसके बाद पूरे गांव में तनाव फैल गया, गांव वाले वहां पहुंचे, पुलिस पहुंची, और वो भाजपा कार्यकर्ता था और उसी इलाके में 4 दिन पहले एक और भाजपा कार्यकर्ता का शव ठीक इसी तरह एक पेड़ से लटका हुआ मिला था। तो पुलिस जब पहुंची तो गांव वालों के साथ तो उसकी धक्का मुक्की हुई, पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अंततः 6-7 घंटे बाद पुलिस शव को कब्जे में ले सकी, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी कुछ आई होंगी।
भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच भी राजनीतिक बयानबाजी चरम पर पहुंच गई है। भाजपा ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस विरोधियों का सफाया करने में जुटी है पुलिस की सहायता से। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि ये आपसी रंजिश का नतीजा है बीजेपी का, और वो बाहर से झारखंड से लोगों को लाके इलाके में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रही है।
क्या अभी तक पता चल पाया है कि ये मौत कैसे हुई? पुलिस का इस पे क्या कहना है?
पुरुलिया के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम के पहले ही एक बयान दे दिया कि ये राजनीतिक हत्याएं नहीं है, ये आत्महत्या का मामला है। दूसरी और पहली जो घटना हुई वो निजी दुश्मनी के चलते हुई, तो उसी वजह से राज्य सरकार ने आनन फानन में उनको हटा दिया है। उनकी जगह आकाश मघारिया ने वहाँ कार्यभार संभाल लिया है। और आज बीजेपी ने 12 घंटे बंद बुलाया है इलाके में। ये है अब तक की स्थिति।
जानकारी दे रहे थे पत्रकार प्रभाकर एम। और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या है। मौजूद है सिंधु वासनी। जी सिंधु,
ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर श्रीनगर में जो कश्मीरी युवक मारा गया सीआरपीएफ की जीप से कुचलकर, उसकी खबर है। और जनसत्ता की रिपोर्ट है कि घाटी में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं और कई जगहों पर धारा 144 लगाई गई है। श्रीनगर और बडगाम में मोबाइल इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया है।
जी विस्तार से माजिद जहांगीर ने भी ये रिपोर्ट दी जो हमने श्रोताओं को बताई।
और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भारत का उत्तर पूर्वी जो राज्य है मेघालय, उसकी खबर है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी हालात तनावपूर्ण हैं, और हालात तनावपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ का जो खासी समुदाय है, जो खासी समूह है, वो लोग चाहते हैं, उनकी मांग ये है कि वहाँ रहने वाले जो बाहरी ख़ासतौर से जो पंजाबी लोग हैं उनको निकालने की मांग कर रहे हैं। ये इसलिए ये सब शुरू ऐसे हुआ कि गुरुवार को एक पंजाबी महिला और एक खासी युवक में झगड़ा हो गया था, उसके बाद बात बिगड़ती चली गई और बात इतनी बिगड़ गई कि कल रात कर्फ्यू लगा दिया सेना ने, फ्लैग मार्च किया और
यानी तनाव काफ़ी बढ़ गया।
हाँ, काफ़ी तनाव बढ़ गया है। उसके अलावा एक खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, खबर यह है कि सऊदी अरब ने कतर को धमकी दी है कि अगर वो रूस के टॉप रेंज के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा तो उसे सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा सऊदी अरब की तरफ से। एक और खबर है कि शिमला में पानी की किल्लत की वजह से वहाँ के सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं 4 से 8 जून तक के लिए। तो ऐसा बहुत कमी होता है जब पानी की कमी की वजह से स्कूल
बंद कर दिए गए हैं। पहले पर्यटकों को आने से मना किया गया था। बहुत शुक्रिया सिंधु वासनी इस अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब उर्दू अखबारों की समीक्षा, जिसे तैयार किया है इकबाल अहमद ने और पेश कर रहे हैं दिलनवाज पाशा।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते पाकिस्तान में होने वाले आम चुनावों से जुड़ी खबरों के अलावा इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान भी सुर्खियों में रहीं। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव की। अखबार नवाए वक्त के अनुसार 25 जुलाई को पाकिस्तान में संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव होंगे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वहां एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री और राज्यों में कार्यवाहक मुख्यमंत्रियों की निगरानी में चुनाव कराए जाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस नसीरुल मलिक को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है, जिनकी निगरानी में चुनाव कराए जाएंगे। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 31 मई को खत्म हो गया है और कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने 1 जून को अपना पदभार संभाल लिया। अखबार जंग के मुताबिक पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान जस्टिस नसीरुल मुल्क ने कहा कि चुनाव अपने समय पर ही होंगे और वो इस काम में चुनाव आयोग को पूरा समर्थन देंगे। अखबार दुनिया के मुताबिक इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा था, अब भी कुछ लोग चुनाव को स्थगित कराना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें 1 घंटे की भी देरी मंजूर नहीं। इमरान खान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि झूठे खान ने खैबर पख्तूनख्वा को बर्बाद कर दिया, सब जानते हैं कि अब केपी में चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग ही जीतेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने स्पष्ट किया कि वो भी चाहते हैं कि चुनाव समय पर हों और निष्पक्ष हों। चुनाव से जुड़े एक अहम मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ पर चुनाव लड़ने पर लगी आजीवन पाबंदी को खत्म कर दिया है। पाकिस्तान में इन दिनों दो किताबों की भी खूब चर्चा हो रही है। पहली किताब है द स्पाई क्रॉनिकल्स, रॉ ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख AS दुलत और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त असदुर्रानी ने मिलकर यह किताब लिखी है। अखबार जंग के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का कहना है कि किताब में लिखी गई बातें हकीकत से कोसों दूर हैं और इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल असदुर्रानी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 28 मई को सेना मुख्यालय तलब किया गया था, लेकिन उनके जवाब से सेना संतुष्ट नहीं थी और सेना ने जनरल दुर्रानी के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया है। दूसरी किताब और भी ज्यादा चर्चा में है, हालांकि वो अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई है। ये किताब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान की आत्मकथा। अखबार जंग के मुताबिक रेहम खान अगले हफ्ते लंदन में अपनी किताब रिलीज करेंगी। अखबार के मुताबिक इस सिलसिले में उन्होंने अमरीका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी से लंदन में मुलाकात की है और उस मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अखबार के अनुसार पाकिस्तानी राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि इस किताब के सामने आने से इमरान खान को राजनीतिक धक्का लगेगा और 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव को देखते हुए इस किताब को रिलीज किया जा रहा है।
उर्दू अखबारों की समीक्षा पेश कर रहे थे दिलनवाज पाशा। और हम बता दें कि इन दिनों बिहार की राजधानी पटना के इंजीनियर आदर्श कुमार भी खबरों में है। उन्हें गूगल की ओर से सालाना 1,20,00,000 रुपए की नौकरी का ऑफर मिला है। आदर्श की कामयाबी की कहानी सुना रहे हैं पटना से मनीष शांडिले।
आदर्श को बचपन से ही गणित के मुश्किल सवालों को सुलझाना बहुत पसंद आने लगा था और इसने आगे चलकर उन्हें एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनने में बहुत मदद की। आदर्श को 12वीं के मैथ्स और केमिस्ट्री के पेपर में पूरे 100 मार्क्स मिले थे। साल 2014 में पटना के BD पब्लिक स्कूल से 94% मार्क्स के साथ उन्होंने 12वीं पास की। इसके बाद उन्हें JEE एंट्रेंस के रास्ते IIT रुड़की के मैकेनिकल ब्रांच में दाखिला मिला। आदर्श के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनने की कहानी कुछ ऐसी है।
मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया था, ठीक है, मतलब मेरी JEE रैंक उतनी थी तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया वहाँ पे IIT रुड़की में। बट मुझे मैकेनिकल में उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब वहाँ पर जाने के बाद। तो धीरे धीरे मैं मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड पहले से था जैसा बताया, तो मैं उस तरफ की चीज़ें एक्सप्लोर करने लगा। तो पहले मैं मैथ्स वैथ्स के सवाल करता था इधर उधर, फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं, तो मैं ईयर में मतलब आगे चलते चलते उस फील्ड में चला गया फिर धीरे धीरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ।
आदर्श इस साल कैंपस सिलेक्शन से एक कंपनी के लिए चुन लिए गए थे, लेकिन इस बीच गूगल में ही काम करने वाले आदर्श के एक सीनियर हर्षिल शाह की हौसला अफजाई से उन्होंने गूगल में नौकरी के लिए अप्लाई किया। इसके बाद लगभग 2 महीने तक चले कई ऑनलाइन और हैदराबाद में हुए ऑन साइट स्टेज से गुजरने के बाद उन्हें गूगल में नौकरी मिली। आदर्श इसी साल 1 अगस्त से गूगल के जर्मनी स्थित म्यूनिक ऑफिस में काम करना शुरू करेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज मिलने के बाद भी आदर्श के पांव पूरी तरह जमीन पर हैं।
पैकेज में मतलब ये बड़ा फिगर लगता है क्योंकि ये INR में होता है, पहला चीज तो ये है। वहां पर कंट्री में वो यूरोज और US डॉलर्स में जो भी चीजें होती हैं ऐसे होती हैं, और CTC कंबाइंड पैकेज होता है। तो यहाँ पर ये मैंने काफी बड़ा मिसकॉन्सेप्शन देखा है, लोगों को ये काफी बड़ी फिगर लगती है ऐसे INR में देख के, बट ये वहां के स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मल ही है। मतलब क्योंकि वहाँ पर लिविंग स्टाइल या कॉस्ट ऑफ लिविंग या लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के काफी हाई होते हैं कंपेयर टू यहाँ पे, मतलब टू बी ऑनेस्ट।
आदर्श के मुताबिक उन्होंने अब तक यह प्लानिंग नहीं की है कि इस पैकेज से मिलने वाले पैसे से वे क्या क्या करेंगे। फिलहाल उनके जहन में बस यह है कि उन्हें अपनी पहली कमाई से छोटे भाई अमनदीप के लिए अच्छी सी विदेशी ब्रांड की घड़ी खरीदनी है। आदर्श अपने परिवार से नौकरी के लिए विदेश जाने वाले भी पहले शख्स हैं। ऐसे में इस कामयाबी के सहारे आदर्श की माँ कविता शर्मा की ख्वाहिश सिंगापुर घूमने की है, तो आदर्श के पिता वीरेंद्र शर्मा गूगल हेडक्वार्टर देखने की तमन्ना रखते हैं।
जहाँ भी रहेगा एज ए पेरेंट्स हम लोगों का आना जाना रहेगा, इसमें कहीं दूर वैसा अगर वैसा कोई स्पेसिफिक नाम अगर पूछते हैं तो अमेरिका का माउंटेन व्यू जो है जहाँ गूगल का इसका ऑफिस हेड ऑफिस भी है वहाँ हम लोग जाना पसंद करेंगे। हमारे पसंद की बात आपने पूछा है तो माउंटेन व्यू जो है अभी चूंकि इसका हेडक्वार्टर वहाँ है तो वहाँ से इसका थोड़ा लगाव रहेगा, तो उस परिस्थिति में अगर यह माउंटेन व्यू में रहा तो वहाँ हम लोग जरूर जाएंगे।
आदर्श ने इस साल अप्रैल में चीन के बीजिंग में हुए प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट ACM ICPC में हिस्सा लिया था। इसमें पूरी दुनिया भर से टीम आती है। इस कॉन्टेस्ट में प्रोग्रामिंग से जुड़े प्रॉब्लम्स के कोड लिखने होते हैं। भारत की 8 टीमों में उनकी टीम को दूसरा स्थान मिला, जबकि दुनिया भर की 140 टीमों में वे 56वें स्थान पर रहे थे। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
और अब वक्त है BBC न्यूज मेकर्स का। इस हफ्ते के न्यूज मेकर हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 2 छात्र जिन्होंने 12वीं और 10वीं की परीक्षा में सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। कैसे मिली उन्हें कामयाबी, सुनिए।
तो आज आप मिलेंगे दिल्ली के सरकारी स्कूल के टॉपर प्रिंस कुमार से, जिन्होंने 12वीं क्लास में साइंस स्ट्रीम से
97%।
तो दूसरी तरफ दिल्ली की ही सरकारी स्कूल की 10th क्लास की टॉपर दिव्या रघुवंशी होंगी हमारे साथ BBC न्यूज मेकर्स में। जो भी कोई प्रिंस कुमार से मिलता है तो यही पूछता है, अच्छा बेटा अब आगे क्या करोगे?
मेरा मेन फोकस तो NDA पे है, पर साइड स्टेप मेरा इंजीनियरिंग भी है NSIT से। JEE मेंस का जो एग्जाम था वो तो क्लियर हो गया है, अभी एडवांस का रिजल्ट आएगा अभी 10 तारीख को।
दिल्ली के 12वीं क्लास के सरकारी स्कूल के टॉपर प्रिंस कुमार।
पहले हम बेड पे पढ़ते थे दीदी और मैं, तो मम्मी पापा को किचन में बैठना पड़ता था, तो इसीलिए मम्मी पापा ने एक बाथरूम था छोटा सा रूम से अटैच, तो मम्मी पापा ने बोला इसको मतलब इसकी पाइपिंग मतलब इसको हटा देते हैं बाथरूम को पूरा यहाँ से, तो अब यहाँ पे टेबल रख देते हैं। तो मम्मी पापा ने वहाँ टेबल रख दिया और वो छोटा सा ही था तो एक टाइम पे एक ही बैठ पाते थे, तो 8 से 10 दीदी पढ़ती थी और 10 से 12 मैं पढ़ता था उसके अंदर, ऐसे शिफ्ट लगती थी हमारी। और जब दीदी का जैसे कल एग्जाम है तो आज दीदी ज़्यादा देर तक पढ़ेगी, मैं सो जाता था आराम से, और जब मैं पढ़ता था जैसे कल मेरा एग्जाम है तो मैं आज पढ़ूंगा तो दीदी सो जाती थी ऐसे बाहर।
दिल्ली के सरकारी स्कूल में 10th क्लास की टॉपर दिव्या रघुवंशी जो हैं इस वक्त हमारे साथ BBC न्यूज मेकर्स में।
98%।
तो बाकी तो कहाँ रह गए, किसी ने पूछा?
SST में रह गए, 95 मार्क्स आए उसमें। साइंस में 100, मैथ्स में 99, इंग्लिश में 99 और हिंदी में 97।
तो इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको दिव्या?
बस रेगुलर रहती थी, जितना पढ़ रही हूँ पूरे फोकस से पढ़ो, उस टाइम कुछ नहीं सोचना, टाइम थोड़ा हो चलेगा लेकिन फोकस पूरा होना चाहिए, और जब लगे कि बोर हो रहे हो उस टाइम कुछ और कर लो, क्योंकि उस टाइम वैसे भी दिमाग वहाँ पर नहीं लग रहा है, तो इससे बेटर कुछ और ही कर लो, उसमें 100% दे लो अपना।
दिव्या रघुवंशी जो अपने साथी जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहती हैं?
स्टडी करो लेकिन लेबरस की जगह स्मार्ट स्टडी करो, मतलब कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप पहले देखो कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को क्लियर ही नहीं है लेकिन उनको पढ़ना क्या है उसके लिए टीचर्स से और जो आपके बड़े लोग हैं उनसे पूछो और फिर उस अकॉर्डिंग एकदम टेबल बनाकर मतलब कि एक ना ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ो, बेसिक क्लियर, उसके बाद एडवांस, इस तरीके से पढ़ना चाहिए।
तो इसी के साथ दीजिए इजाजत इंदु पांडे को फिर से मिलने के लिए।
टॉपर्स के साथ ये मुलाकात आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब जान लेते हैं खेल की दुनिया की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में कल कुछ उलटफेर के बीच दिग्गज खिलाड़ी आगे बढ़ने में कामयाब रहे। महिला एकल वर्ग में छठी वरीयता हासिल चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा, 28वीं वरीयता हासिल लेकिन बेहद अनुभवी रूस की मारिया शारापोवा से 6-2, 6-1 से हारकर बाहर हो गई। ये तीसरे दौर का मुकाबला था। उनके अलावा 8वीं वरीयता हासिल चेक गणराज्य की ही पेत्रा क्विटोवा भी हारकर बाहर हो गई। उन्हें 25वीं वरीयता हासिल एस्टोनिया की एनेट कोंटावेट ने कड़े संघर्ष के बाद 7-6, 7-6 से हराया। पुरुष एकल वर्ग में भी 15वीं वरीयता हासिल फ्रांस के लुकास पाउले, गैर वरीयता हासिल रूस के खचानोव के हाथों 6-3, 7-5, 6-3 से हार गए। लेकिन शीर्ष वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल का जादू रोला गैरा की लाल बजरी पर बरकरार है। कल उन्होंने 27वीं वरीयता हासिल फ्रांस के रिचर्ड गेस्के को 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। छठी वरीयता हासिल दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन ने जर्मनी के मिश जवेरेव को 6-1, 6-7, 6-3, 7-6 से और 8वीं वरीयता हासिल बेल्जियम के डेविड गोफिन ने फ्रांस के गेल मोनफिल्स को 6-7, 6-3, 4-6, 7-5, 6-3 से मात दी। महिला एकल वर्ग में तीसरी वरीयता हासिल स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा ने ऑस्ट्रेलिया की सामांथा स्टोसुर को बेहद आसानी से 6-0, 6-2 से हराकर तीसरे दौर की बाधा पार की। उधर इंग्लैंड ने लीड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ 128 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। कल जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर 302 रन बना लिए थे। स्टंप के समय जॉस बटलर 34 और सैम करेन 16 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि एलेस्टर कुक ने 46, कप्तान जो रूट ने 45 और डोमिनिक बेस ने 49 रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तान की पहली पारी केवल 174 रन पर सिमट गई थी। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच 14 जून से एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा अंगूठे की चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह दिनेश कार्तिक को भारतीय टीम में शामिल किया गया है।
कर्नाटक के चुनाव के बाद से ही पेट्रोल की कीमतों का उतार चढ़ाव लगातार सुर्खियों में रहा है। बीबीसी के कार्टूनिस्ट कीर्तिश ने इसे लगातार अपने नज़रिए से देखा। उनके कार्टून अगर आप देखना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। उन्होंने कई दूसरे मुद्दों पर भी चुटकियां ली हैं। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधु वासनी से।
इसराइली सेना की गोलीबारी में 21 साल की फलस्तीनी नर्स की मौत के बाद गजा में फलस्तीनी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। एल्यूमिनियम और स्टील उत्पादों पर टैक्स लगाने के अमेरिका के हालिया फैसले के बाद G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने एक आपातकालीन बैठक की। स्पेन में नई सरकार बनने के साथ ही कैटालोनिया की आज़ादी का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि कोरियाई प्रायद्वीप से अमेरिकी सुरक्षा बलों को हटाने की उनकी कोई योजना नहीं है। जॉर्डन में सियासी संकट का दौर चल रहा है। वहां लगातार तीसरे दिन लोगों ने कैबिनेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री हनी मुल्की के इस्तीफे की मांग की। क्यूबा के नए राष्ट्रपति मिगेल डियास कनेल ने ऐलान किया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के नेतृत्व वाली एक टीम संविधान में सुधार करेगी और पिछले दशक के आर्थिक सुधारों को अंतिम रूप देगी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। फेसबुक प्रसारण में मदद की विभुराज ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।